हेलो
हेलो हेलो,
वॉइस ऑफ अमेरिका, आपको मेरी आवाज आ रही है
जी? मैंने बात करनी है जी, गाने की फरमाइश करनी है जी।
हेलो, आवाज आ रही है?
हेलो चैट बस्टर्स, एक गीत की फरमाइश है।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम चार्ट बस्टर्स। मैं हूं सादिया जेब्रान झा और मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं फायजा बुखारी और आज उनका साथ दे रहे हैं फवाद इलियास और हमारे इंजीनियर हैं जो गिल। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800 777 8 9 पर और आपको बताते चलें कि आज हमारे साथ एक मेहमान भी शामिल होंगे आज के शो में। जैसा कि हमने अपने चार्ट बस्टर्स का जो फेसबुक पेज है उस पर आपको बताया था कल कि हमारे साथ गुलकार अरीब अजहर मौजूद होंगे। आपने उनसे सवालात भी पूछे हैं जो कि प्रोग्राम के दौरान मैं आपके नाम के साथ उनसे पूछूंगी। आप जानते ही हैं हमने पहले भी मैंने वहां डिटेल थोड़ी लिखी थी कि सूफी और जो लोक मौसीकी है वो उनकी खास पहचान है और उनके गीतों से भी आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। तो प्रोग्राम के दौरान उनसे गपशप करेंगे। अगर प्रोग्राम के शुरू में वो हमारे साथ होंगे तो आप अपने सवालात हमारे फेसबुक के पेज पर लिखते रहिए, हम उनसे पूछेंगे। आपकी कॉल्स हम लेंगे आधे घंटे के बाद, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9:30 के बाद 0800 777 8 9 पर। और आइए अब सुनते हैं अरीब अजहर की आवाज में सैफुल मुल्क। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हमारे साथ एक खास गेस्ट भी शामिल होंगे प्रोग्राम में, थोड़ी देर बाद वो हमें ज्वाइन करेंगे। इससे पहले कि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हों और आप उनकी बातचीत सुने, हम अपने कुछ कॉलर्स को ले लेते हैं। डॉक्टर मोहम्मद आजम ने खुशाब से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम सादी साहिबा।
सबसे
पहले तो मैं अपनी वालदा साहिबा और वालिद साहब की तरफ से आपको स्पेशल सलाम।
वालेकुम अस्सलाम।
बिलखसूस अम्मा जी की तरफ से बड़ी खुश हुई हैं
बहुत
कि मेरी बेटी अमेरिका में बैठकर मुझे इतनी इज्जत दी है, अल्लाह उसको और इज्जत दे।
थैंक यू सो मच।
तो पहले जुम्मे को इस तरह प्रोग्राम के इंतजार में थी जैसे कोई मेहमान आने वाला हो। कहते हैं
बेटा
सुनना है, हाँ मुझे कहते हैं प्रोग्राम लगाओ बेटा। मैं काम चला गया था तो दोबारा तो मैंने कहने लगे कि बेटा आपने रेडियो नहीं लगाया। मैंने कहा अम्मी अब तो प्रोग्राम खत्म हो गया है। तो उनकी तरफ से बहुत सुपरसी सलाम मैं अर्ज करता हूँ।
बहुत खुशी लगी हमें, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
मेरे छोटे भाई भी बैठे हैं, डॉक्टर मदर कयूम साहब भी बैठे हैं, वालिद साहब भी बैठे हैं, वालदा भी बैठी हैं,
उनको भी हमारा बहुत बहुत सलाम।
उन्होंने मुझे कहा है इंशाल्लाह ताला। और मेरे साथ हैं मलिक रमजान साहब, अंकल गुलाम मोहम्मद है, गौस मोहम्मद है, शेरबाज भुट्टे हैं, फलक शेर साहब, शेरबाज भुट्टा साहब कह रहे थे कि इतना मजेदार प्रोग्राम आपने सुना है कि हम सारे सुन रहे हैं। मेरे जितने दोस्त रेडियो पे सुन, उन्होंने कहा कि आपकी वालदा साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं तो वो भी प्रोग्राम सुन रही हैं। मैंने कहा ये उनकी मोहब्बत है,
हमारी रेडियो की कम्युनिटी है।
जी जी
बिल्कुल।
और सालिम मोहम्मद भी साथ हैं। और मैं सलाम देना चाहता हूँ जुबैदा चांडी साहब, पिछले प्रोग्राम में कह रहे थे कि भाई आपने मुझे सलाम नहीं दिया। तो सबसे पहले आज मैं जुबैदा चांडी साहब और शेख मुमताज अंजब साहब, गुलाम अब्बास साहब, सफीर मलिक साहब की तरफ से स्पेशली सलाम। और उन्होंने एक नगमा कहा है मंसूर अली मंसूर मलंगी साहब का, अतलाइयां अच्छियां झर भरियां,
ठीक है
ये खसूसी आपने उनके। और डॉक्टर जफर इकबाल साहब को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और आपकी टीम को स्पेशली मेरी तरफ से और मेरे घर वालों को तरफ सलाम।
वालेकुम अस्सलाम हमारी तरफ से भी, और आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का जो इतनी मोहब्बत से हमारा शो सुनते भी हैं और सराहते भी हैं।
डॉक्टर मोहम्मद करूंगा,
ठीक है मोहम्मद नासिर से बात, बिल्कुल ठीक है आप जरूर करवाइएगा। मोहम्मद नासिर से आप बात करते हैं जिन्होंने झंग से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आज मेरी कॉल जल्दी लग गई, मैं बहुत खुश हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं वैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, मैं वाकई उनकी सुन रहा था। तो ये भी रेगुलर कॉलर है आपके जैसे अलग तशाकर साहब है, बल्कि उनकी पहली कॉल लगती है अलग तशाकर की, आज पता नहीं वो क्या
तो
काफी देर से भी कर रहे हैं लेकिन अभी उनका भी नंबर लग नहीं रहा। और मेरे साथ दूसरे मोबाइल पे लाइन पे भी हैं, तो मैं उनको भी कहूंगा कि कोशिश करें, मुमकिन है कि जल्दी लग जाए। और डॉक्टर आजम साहब को, अल्लाह ताला शाकिर साहब को, रेडियो फॉर्म की तरफ से जितनी भी रेडियो फॉर्म इंटरनेशनल रेडियो फॉर्म की टीम है, जितने भी सदूर हैं, जितने भी मेम्बर हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम। और खुसूसी आप जुबैदा चांडियों को मैं सलाम कहूंगा। आज हमारे पास मौसम भी बहुत ठंडा है, बारिश हो रही है,
अच्छी बात है।
तकरीबन 2 बजे से बारिश हो रही है और अभी तक जबरदस्त मौसम है। और मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को कहूंगा कि कश्मीर के हवाले से मुतहद रहें, हमें किसी का कोई डर नहीं है, हमें जीना भी कश्मीर के लिए है, अपने मुल्क के लिए है, और मरना भी अपने मुल्क और कश्मीर के लिए है।
बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद नासिर। और अब बात करते हैं अब्दुल रहीम से जिन्होंने वजीरिस्तान से कॉल की है। गुज़श्ता जुमे को भी इन्होंने कॉल की थी और मुझे आपकी बातें बड़ा याद आती रही अब्दुल रहीम साहब, इसलिए मैंने आपके लिए खसूसी गीत रखा था। हालांकि आपने कहा कि नहीं छोड़े मैं गीत तो नहीं सुनना चाहता, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए आज एक गीत रखा था।
खैर आपका और मेहमान तो है नहीं,
अभी आ जाएंगे।
आज तो मैं गीत की फरमाइश सिर्फ कश्मीर भाई के लिए करता हूँ, और ये जो गीत आपने रखा है ये भी कश्मीर भाई के नाम करता हूँ।
ठीक है।
बात दरअसल ये कि अफसोस की बात तो ये है कि कश्मीर के जो लोग हैं ये हकीकत में अभी जो पहले वो इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता था, अभी तो इंडिया पाकिस्तान पर भी इल्जाम नहीं लगाएगा क्योंकि एजेंडा जो उसने लगाया अभी खुद वो अपना चतानेगा। लेकिन कश्मीर भाई से अगर काफी उठेगा तो वो पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये अला जाते हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि ये सिर्फ कश्मीर भाई पर हमला नहीं है, ये तमाम मुसलमान के दिल पर खंजर घुसने की बात है, और हकीकत में ये हम सारे मुसलमानों के आंख रो रहा है कि ये इतना नजदीक इलाके पर जो है करना, एक मुसलमान इलाके पर कैसा जो है करना, मुल्क पर जो है करना इस तरह वार।
बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का। आप लोगों के पैगाम हमारे कश्मीर में बहुत ज्यादा हमारी लिसनरशिप है, तो आपके पैगाम पहुंच गए, आपके ख्यालात उन तक पहुंच गए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और हम कोशिश कर रहे हैं, हमने जैसा कि कहा था कि हमारे साथ अरीब शामिल होंगे, उन्होंने हमसे वादा भी किया है, उन्होंने हमें अपने सारे गीत भेजे और हमारा इंतजार भी कर रहे हैं। उनका फोन हम नहीं इस वक्त कनेक्ट कर पा रहे, लेकिन पूरा प्रोग्राम हम कोशिश करते रहेंगे और जैसे ही वो हमारे साथ आए आपसे उनकी बातचीत जरूर करवाएंगे। चलते हैं अगले गीत की तरफ, ये भी अरीब ही का गीत है, तो जब तक वो नहीं आते आप उनकी मौसीकी से लुत्फंदोज हों।
नूरे अज़ल हुसन हकीकी नूर अजल तैन वाजिब ते इमकान कहूं तैन खालक जात कदीम कहूं तैन हादिस खल्क जहान कहूं तैन मुतलक महज वजूद कहूं तैन अलमिया आयान कहूं अरवा नफूस अकूल कहूं अशबाह आन निहान कहूं तैनू अर्श कहूं अफलाक कहूं तैनू नाज नईम जनान कहूं तैनू पत जमात नबात कहूं हैरान कहूं इंसान कहूं तैनू मस्जिद मंदर दैर कहूं तैनू कोठी ते कुरान कहूं तस्बीह कहूं सुनार कहूं तैनू कुफर कहूं ईमान कहूं तैनू बादल बरखा गाज कहूं तैनू बिजली ते बारान कहूं तैनू आब कहूं तैनू हाक कहूं तैनू बाद कहूं नीरान कहूं तैनू दशरथ लक्ष्मण राम कहूं तैनू सीता जी जानान कहूं बलदेव जसूदा नंद कहूं तैनू कृष्ण कन्हैया कान कहूं तैनू ब्रह्मा विष्णु गणेश कहूं महादेव कहूं भगवान कहूं तैनू गीत ग्रंथ ते वेद कहूं तैनू ज्ञान कहूं अज्ञान कहूं तैनू इब्राहिम हवाशीस कहूं तैनू रूह कहूं तूफान कहूं तैनू इब्राहिम खलील कहूं तैनू मूसा बिन इमरान कहूं तैनू हर दिल दा दिलदार कहूं तैनू अहमद आली शान कहूं तैनू शाहिद मलक हिजाज कहूं तैनू बायस कौन मकान कहूं तैनू नाज कहूं अंदाज कहूं तैनू हूर परी गिलमान कहूं तैनू नोक कहूं तैनू टोक कहूं तैनू सुरखी बीड़ा पान कहूं तैनू तबला ते तंबूर कहूं तैनू ढोलक सुर ते तान कहूं तैनू हुसन तिहार सिंगार कहूं तैनू अशबा गमजा आन कहूं तैनू इश्क कहूं तैनू इल्म कहूं तैनू वहम यकीन गुमान कहूं तैनू हुसन कवि इतराक कहूं तैनू शौक कहूं वजदान कहूं तैनू सकर कहूं सकरान कहूं तैनू हैरत ते हैरान कहूं तस्लीम कहूं तलवीन कहूं तमकीन कहूं इरफान कहूं तैनू सुंबल सोसन सर्व कहूं तैनू नरगिस ना फरमान कहूं
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स. मैं हूं सादिया ज़ेब्रान झा और मेरे साथ हैं फायजा बुखारी और फवाद इलियास और कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे हमारे आज के गेस्ट. लेकिन इससे पहले हम अपने कॉलर से बात कर लेते हैं. चूनिया से हमें कॉल की है तारिक चौथाई ने. अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम बहन. मेरी तरफ से आप सबको, मेरी बहन फायजा को और आपको, सब सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम.
और मेरे कश्मीरी बहन भाई जो बदकिस्मती से अब ये नशरियात नहीं सुन रहे होंगे, उनकी अजमत को मैं सलाम पेश करता हूँ जो इस वक्त बहुत तकलीफ में मुबतला है. तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि ये गीत अगर हो सके तो वो सुना देना. ए धरती मेरा सोना यारो मैं सुनहरा, पंजाबी अमानत अली खान की आवाज है.
ठीक है,
तो अगर हो सके तो मेरी सब बहन भाइयों को सुनाओ.
बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच तारिक साहब. और हबीब हुसैन शाह से बात करते हैं जिन्होंने रावला कोट से कॉल किया. अस्सलाम वालेकुम हबीब हुसैन शाह साहब.
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू. मैं सबसे पहले सादिया आपको اور فائزہ بخاری اور ویئر کی ساری ٹیم کو عید مبارک کہتا ہوں، چونکہ اب عید کے بعد ہی ملاقات ہوگی. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ پچھلی دفعہ آپ نے میری فرمائش پہ گانا سنایا، بہت ہی اچھا گانا تھا سریا کا، اور بہت لوگوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ بہت اچھا گانا تھا.
اچھا.
اور ہاں جی جی. اور آج دہ اگر آپ گانا سنا دیں، میری ان سے ملاقات بھی، ہندوستان کی ایک گلوکارہ تھی ام دیوی، اما دیوی بھی
کہتے ہیں.
اور اگر جی جی اگر آپ نے پرانی فلمیں دیکھی ہیں تو فلمی نام تھا ٹون ٹون موٹے علی. تو ان کا ایک ہی گانا پوری زندگی کا افسانہ لکھ رہی ہوں دلے بے قرار کا.
ٹھیک ہے،
بہت مہربانی. باقی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. یہ جو گلوکار آئے بڑا اچھا ہے، ان کا منفرد سٹائل ہے.
بالکل بالکل. بس ابھی ہمیں جوائن کرنے والے ہیں.
بہت شکریہ آپ کے لیے، آپ کے پروگرام کے لیے بڑی بے چینی رہتی ہے.
اچھا تو یہ بتائیں حبیب حسین شاہ صاحب کہ عید کب ہے پاکستان میں؟
عید غالباً یہ ہو جائے گی نا میرے اندازے میں 12 تاریخ کو،
سوموار کو. اتوار کو نہیں ہے پاکستان میں عید؟
میرا اندازہ نہیں ہے کہ اتوار کو ہو سکے.
اچھا اب یہ چھوٹی عید تو ہے نہیں، چاند تو نکل چکا ہے نا، پتا تو ہوگا 10 تاریخ کب ہے ذی‌الحج کی.
ہاں وہ تو سعودی عرب میں تو این تو ادھر ہے میرے خیال میں، میرا میں نے چونکہ اس پہ کوئی وہ توجہ نہیں دی، تو میرے خیال میں 11 تاریخ کو ہوگی. اور آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک.
بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. اور اب بات کرتے ہیں اللہ دیتا شاکر صاحب سے، جنہوں نے وہاڑی سے ہمیں کال کی ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام میڈم جی.
کہیے جناب.
میں رستے میں تھا اور آپ کے پروگرام کی اتنی بے چینی کہ میں نے ناصر بھائی کو کہا کہ آپ جو ہے نا ریڈیو آن کریں، اور میں ابھی پہنچا ہوں. پہلے میں نے ریڈیو آن کیا ہے، میں نے کہا کہ سعدیہ سبا کا پروگرام جا رہا ہے، تو کیونکہ یہ 8 دن جو ہے نا یہ ہمیں ایک مہینے کی طرح لگتے ہیں جو گزرتے ہیں نا.
اتنی ڈیڈیکیشن.
ہاں کہ 2 پروگرام ہونے چاہیے ایک ہفتے میں. چلو بہرحال میں اپنے تمام دوستوں کو 12 تاریخ کو ہے عید سوموار والے دن.
اچھا سوموار والے دن ہے،
تو ہاں سوموار والے دن تو نصرت فتح علی خان یا پٹھانے خان یا سریہ ملتانی کر ان کی فرمائش بھی رہے گی، اور سفیر ملک، عابد گرمانی، رمضان کیسر اور فیض احمد فیض، ڈاکٹر احمد ندیم اور ناصر بھائی جنگ سے جنہوں نے مجھے پروگرام آپ کا سنوایا، ٹیلی فون کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.
اور
جتنے بھی ہمارے انٹرنیشنل ریڈیو فورم پیپل یہ دیاڑی کے یہ پورے پاکستان میں لسنر ہیں، پچھلی دفعہ وہ فاطمہ قادری صاحبہ آئی تھی،
بالکل.
وہ بھی ہمارے فورم سے دیا آپ کو سلام کہہ رہی ہیں، اور اگلے انشاءاللہ پروگرام میں آپ کو جوائن بھی کریں گی.
بہت شکریہ
سبھی کو، بہت بہت سلام،
تھینک یو سو مچ. اور آپ سب کا بہت شکریہ. ہمیں اسی طرح سے آپ اپنی رائے پہنچاتے رہیے ہم تک ہمارے فیس بک کے پیج پر facebook.com/chartbusters VOA، اور ہمیں ہمارے ٹول فری نمبرز پہ کال بھی کر سکتے ہیں 0800-777-789. یہ فون آپ کو صرف اپنے لینڈ لائن سے فری ہے، اگر آپ موبائل سے کال کریں گے تو اس کے آپ کو چارجز پڑیں گے. چلتے ہیں اگلے گیت کی طرف. اس سے پہلے کہ اریب ہمیں جوائن کریں، ہم تو ان کے سارے گیت کو سنوا رہے ہیں تاکہ اچھی طرح آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنے اچھے اچھے گیت ہیں ان کے. تو چلتے ہیں ان کے گیت میرے دیس کی طرف.
میرے دیس میں ہے امکان بہت، آس امید ارمان بہت، صحرا میں ایک بوند گرے، چشمہ پتھر سے پھوٹے، سخت سیت میں دھوپ کھلے، دریا میں کوئی لہر اٹھے، میرے دیس کے باسی یار بہت، وارفتہ دیں پیار بہت، شگفتہ لہجوں میں بے ساختہ الفت کی صدرنگ باتیں کرتے ہیں، کانوں میں رس بھرتے ہیں، میرے دیس میں ہے امکان بہت، آس امید ارمان بہت. کوئی نہیں ان بن چارہ، کوئی نہیں कदम ये रहते हैं, कोई तूफान उठ जाए सब मुस्कुरा के लेते हैं। जिंदा दिल जफाकश है, जहद मुसलसल करते हैं, मेहनत से गुरेज नहीं पर मौके कम कम मिलते हैं। जेब में चाहे कुछ ना हो, दिल को शादा रखते हैं। मेरे देश में है इम्कान बहुत, आस उम्मीद अरमान बहुत। आंखों में देखो तो है ख्वाब बड़े, खेतों में हरियाली के, शहरों में खुशहाली के, पढ़ के आगे बढ़ने के, आसमां पे
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स और अब शामिल करते हैं आपके फेसबुक के कुछ मैसेजेस। महमल ईमान डी आई खान से लिखती हैं कि सादिया बाजी आप और बाकी सब लोग कैसे हैं। महमल हम सब बिल्कुल ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। फारूक खान जंग से लिखते हैं कि इससे पहले कि ईद की मुबारक देने पर भी टैक्स लग जाए, मेरी तरफ से वॉइस ऑफ अमेरिका की पूरी टीम और तमाम सामईन को दिल की गहराइयों से बड़ी ईद की मुबारक। भाई हमने तो लगा दिया है टैक्स, और टैक्स ये है कि जब से आपकी शादी हुई है आपने हमें एक भी गीत अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके नहीं भेजा, तो जरा इस टैक्स अदा कीजिए जल्द अज जल्द और हमें अपनी आवाज में गीत रिकॉर्ड करके फौरन भेजिए। अरशद नदीम घल्लू लिखते हैं भक्कर से, सादिया जी जुमे को मेरी कॉल नहीं लगी थी, अब मैं अपने कजन तारिक महमूद और इफ्तखार के साथ कहीं गया हुआ था, तो आज तो घर पे ही मौजूद हैं, उम्मीद है आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो कॉल कीजिए, आपकी कॉल तो लगी जाती है, बड़े लकी हैं आप इस सिलसिले में। अकील मागरे ने कश्मीर से लिखा कि मेरा ख्याल है कि मैं अगले जुमे को मैसेज नहीं कर पाऊंगा, इंटरनेट ब्लॉक है, सो पहले ही मैसेज कर रहा हूं, हमारे लिए दुआ करें, और ये कि मेरी पसंद का जो गीत था वो भी चलाएं। तो अकील मैंने गीत तो आपका रखा है लेकिन अगर आपके यहाँ सिग्नल नहीं है और आप नहीं सुन पा रहे तो आपका गीत क्यों ना मैं सेव कर लूं और फिर आपको सुना दूं जब आप सुन भी पाएं। इसके अलावा अशोक ग्रोवर जी ने भटिंडा भारत से लिखा है कि मुझे मेहदी हसन साहब की आवाज में फैज अहमद फैज का कलाम सुनवा दीजिए। तो अशोक जी मैसेज थोड़ा देर से मुझे मिला, नेक्स्ट फ्राइडे को चलेगा, नेक्स्ट फ्राइडे को सुना दूंगी, बड़ी खूबसूरत गजल है, ठीक है। और जावेद गुजर साहब लैया से लिखते हैं कि चार्ट बस्टर्स मेरा फेवरेट शो है और रेडियो मुझे इसी की वजह से बहुत पसंद है, एक गीत मुझे सुनवा दीजिए महनाज की आवाज में, और साथ में ये भी लिखा है कि मैं जानता हूँ ये सॉन्ग आपकी म्यूजिक लाइब्रेरी में मौजूद है, इसलिए कि आपने पहले भी किसी की फरमाइश पर ये गीत सुनाया था। तो आप बिल्कुल सही, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, बड़ा सही काम करती है, तो जरूर सुनवा देंगे। आपका मैसेज भी मुझे उस वक्त मिला जब हम बाकी अपना जो लाइनअप है आज के गीत हैं वो सब हम अपने सिलेक्ट कर चुके थे, तो नेक्स्ट जुमे को कोशिश करूंगी कि आपकी फरमाइश गुजर साहब पूरी कर दी जाए। तो चलते हैं अगले गीत की तरफ, इसके बाद फिर आपकी कॉल्स लेंगे, और इस दौरान जब भी हमें अरीब अजहर ने ज्वाइन किया आप उनकी गपशप सुनेंगे, तो चलते हैं उनके एक और गीत की तरफ।
तू दीन मेरा है, तू ही ईमान मेरा है, जो दर्द है दिल में मेरे तू उसकी दवा है, आंखों में तू ही, दिल में तू ही जलवा नवा है। दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, सगी शाहबाज कलंदर, सगी शाहबाज कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर। दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, सगी शाहबाज कलंदर, सगी शाहबाज कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर।
अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर दमा दम मस्त कलन बोलो दमा दम मस्त कलंदर लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन लाल मेरी पत लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर दमा दम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर सखी शाहबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर दमा दम मस्त कलंदर बोलो दमा दम मस्त कलंदर चार चिराग तेरे बलन हमेशा चार चिराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बालन आयो भला झूले लालन पंजवा में बालन पंजवा में बालन आयो भला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर दमा दम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर सखी शाहबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर दमा दम मस्त कलंदर दमा दम मस्त कलंदर लाल शहबाज कलंदर लाल शहबाज कलंदर लाल शहबाज कलंदर लाल शहबाज कलंदर पीर बाबा दे बराबर पीर बाबा दे बराबर नए अंदाज के अंदर नए अंदाज के अंदर काबे आबसरी कलंदर काबे आबसरी कलंदर दाता हयात कलंदर दाता हयात कलंदर पुअली शाह कलंदर पुअली शाह कलंदर रहे करनाल के अंदर रहे करनाल के अंदर अली दम दम दे अंदर दमा दम मस्त कलंदर दमा दम मस्त कलंदर सगी शाहबाज
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स और अब बात करते हैं हमारे साथ लियाकतपुर रहीम यार खान से कॉलर हैं मेहर खालिद महमूद अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम सलाम मेरी मोहतरम बहन
जी आज सारे पूरी फैमिली सुन रही है ना
बहन भाइयों को जी तमाम पाकिस्तान बहन भाइयों को मेरी एडवांस मुबारक पहुंच
गई
तो बहुत शुक्रिया कि जो सिस्टर गाने चल रहे हैं यही हमारी पसंद की होते हैं मेरे साथ हसनैन खालिद हुसैन खालिद आसमा खालिद फातिमा खालिद और मेरी बेटी बेटी जो है ना साजिदा खालिद वो भी प्रोग्राम में हम इसको बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं
मुझे पता है आपकी पूरी फैमिली साथ बैठ के हमारा शो सुनती है बिल्कुल
सिस्टर वो 9 बजे से उनको इंतजार होता है मेरा बेटा जो है ना छोटा हुसैन खालिद वो कहता है बाबा आप चार्ट बस्टर नहीं है वो रेडियो जल्दी जल्दी जो मेरे साथ आके रख देता है
अच्छा तो ये रेडियो सुनने का जो हेरिटेज है वो अपने बच्चों में भी मुंतकिल कर दिया है
सिस्टर बात ये है कि जो रेडियो जो है ना मेरा इतना एक बहुत ही बेस्ट दोस्त है कि इसने मुझे बहुत ही कुछ सिखाया पहले तो उस्ताद ने तालीम दी उसके बाद रेडियो ने मुझे मैट्रिक तक तालीम पहुँचा दी मेरी
जबरदस्त बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों की ये रेडियो के साथ मोहब्बत और डेडिकेशन हम सुनते हैं सुहेल जी
रेडियो है ना
जी जी
रेडियो ना सिस्टर देखें एक तो मेरी वॉइस सुनती है ऐसे शाम को जो मैं वापस लौटता हूँ तो ये रेडियो मेरे जो चार पाई के साथ होता है ये तो वैसा अमेरिका जो है ना
जी जी
ये 2008 की बात सिस्टर एक मिनट थोड़ी सी आपको 2 मिनट की 1 मिनट की कॉल लेना चाहूंगा ये रेडियो वैसा अमेरिका है जो मेरा 2008 से दोस्त है।
अच्छा।
सब दुनिया सो जाती थी, ये वैसा अमेरिका ही था जो रात को मेरे साथ जागता था जब मैं मेहनत मजदूरी करता था। ये साथ मेरे साथ जागता, बोलता और मुझे नींद नहीं आने देता था। ये
बहुत अच्छी बात
है। जब मैं मेहनत मजदूरी पे सिरसा जाता ना, तो यूं ही रेडियो पाकिस्तान वैसा अमेरिका है यूं ही जिसने मुझे कर्ज से निजात दिलवाई, क्योंकि ये मेरे साथ होता था, मैं मेहनत मजदूरी करता था, तो मेरे ये बहुत ही मेरा दोस्त है रेडियो।
बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच। और पारा चिनार चलते हैं जहाँ पर सुहेल हुसैन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल।
अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी है?
जी कहिए, आप कहिए। बिल्कुल ठीक,
शुक्र, मैं तो ठीक हूँ। पहले तो सारे पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। और दूसरी बात है कि मैडम मैं आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ। जब गीति हुसैन कर रही थी चार्ट बस्टर के प्रोग्राम,
अच्छा।
तो बहुत जबरदस्त लगते हैं किस्म किस्म के गाने, मुख्तलिफ किस्म के, तो मतलब गजलें वगैरह वगैरह, सुफियाना कलाम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रोग्राम।
आप हमारे पुराने लिसनर हैं।
बहुत ज्यादा पुराने लिस्टनर हूँ, बहुत ज्यादा, लेकिन कॉल्स का कुछ मसला होता है ना, तो कॉल ज्यादा नहीं मिलती ना, तो पहले से ट्राई करा था कि तकरीबन 3-4 दफा तो रिंग गई लेकिन रिसीव नहीं हुई ना। जब ये कवाली खत्म हो गई तो मैंने कहा कि चलो अभी ट्राई कर लेते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिल्कुल मिल गई ये कॉल।
बहुत अच्छी बात है
आपसे बात होके।
तो सुहेल साहब आप फेसबुक पर आया करें ना, मैसेज वहाँ पर कर सकते हैं, अगर कॉल ना मिले तो वहाँ अपना मैसेज छोड़ दिया करें।
मैडम यहाँ पे 3G का मसला है, नेट का मसला है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हमारे इलाका फाटा एरिया है ना, इमरजेंसी तो अभी कन्वर्ट हो चुकी है ना जिले में, तो यहाँ पे 3G का मसला है, 3G बिल्कुल है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हाँ फेसबुक का यहाँ पे मसला होता है ना, तो इस वजह से फेसबुक पे मैसेजेस नहीं कर सकते ना।
बिल्कुल सही।
हाँ तो मैडम मेरी छोटी सी फरमाइश है, अगर अगले पूरे हो जाए तो बड़े एक राहत फतेह अली की कवाली है, कोई उम्मीद भर नहीं आती।
फिर बताइए सुहेल।
राहत फतेह अली की एक गालिब की कवाली है, गाल मिर्ज़ा गालिब की शायरी है, कोई उम्मीद भर नहीं आती।
बिल्कुल सही है
जी, यही
बिल्कुल सुहेल साहब जरूर सुना देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और अब चलते हैं अगले गीत की तरफ, और अगला गीत अलादिता शाकिर साहब, आपने विहाड़ी से कॉल की थी और इसकी फरमाइश की थी, तो चूंकि आप तो बड़ी जल्दी जल्दी घर पहुंचे हैं ताकि शो सुन सके, तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
खाली हथी गया सिकंदर, जग नु जितन वालियां नु पई अंत घारनी बाजी, कोल टीवी नहीं, कईयां कोल महल, कईयां को कुली भी नहीं, कईयां दे कोल पुत, कईयां दे कोल टीवी नहीं, कईयां कोल महल, कईयां को कुली भी नहीं, कईयां कोल मंजिल, कईयां दे कोल रावी नहीं, रावी नहीं, कई वारी कंडियां ते आके, कई वारी कंडे आते आके,
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स और हमें ज्वाइन किया है चित्राल से मोहम्मद शफी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम
शफी साहब, अपना रेडियो प्लीज ऑफ कर दें। रेडियो ऑफ। वालेकुम अस्सलाम।
मोहम्मद शफी अपर चित्राल बुनी।
जी जी बाजार के सदर।
बाजार के सदर एक तो बाजार के सदर ने अपना लोगों ने आपका शुक्रिया अदा किया कि आपने बाजार के दुकानदारों के नाम पे गाना जो डेलीगेट करवाया था उनकी तरफ से दुकानदारों की तरफ से आपको जी शुक्रिया। खालिद मेहर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कहा जी कि रेडियो जो है ये आप यकीन करें कि एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा साथी है और जरूरत हर जगह पे आपके काम आता है, हर जगह पे आपके साथ होता है। तो मेरा ताल्लुक रेडियो से के साथ बचपन से ही था लेकिन वीओए के साथ मेरा वास्ता जो है ये 2005 से जब मैं आर्मी में था तो कुछ ज्यादा ही इसके साथ मोहब्बत हो गया और मोहब्बत होते होते बस मोहब्बत ही हो गया इसके साथ पक्का मोहब्बत हो गया।
मोहब्बत होते होते आप इसके इश्क में गिरफ्तार हो गए।
इश्क में गिरफ्तार हो गए आप यकीन करें और इस प्रोग्राम करने वाले भी जो है वो आप यकीन करें कि ये भी किसी से कम नहीं है।
बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल तो आप यकीन कीजिए हमारे सारे प्रोग्राम बस आप ही लोगों के लिए होते हैं, हमारे सामने आप ही लोगों के आप कह लीजिए कि मोहब्बत होती है, हमें पता होता है कि आप सुन रहे हैं, क्या सुनना चाहते हैं, किस तरह सुनना चाहते हैं, उस हिसाब से हम लोग अपने प्रोग्राम में तब्दीली लाते रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप।
बिल्कुल
थैंक यू सो मच। और बात करते हैं जावेद कायम खानी से जिन्होंने कोट गुलाम मोहम्मद सिंह से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब।
वालेकुम सलाम। माशाल्लाह प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा चल रहा है। कलंदर साहब कलंदर की आवाज सुन के दिल खुश हो गया। हमारे पास यहाँ बरसात हो रही है।
हाँ मैंने सुना
और बरसात
मौसम बहुत अच्छा है
जी हमारे पास बस जी।
तो क्यों ना आपको बरसात के मौसम के हवाले से अगला गीत जो है वो सुनवाया जाए। और जी जी
ये कहना था कि बरसात के हवाले से कोई अच्छा सा गीत सुना दे आपकी मेहरबानी होगी।
बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जी जी बहुत शुक्रिया आपका। अपने दोस्तों के नाम हम नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। तो चूंकि अभी हमने जिक्र किया है, आपने भी कहा कि बारिश हो रही है, हमारे एक और कॉलर ने भी कहा कि सावन का मौसम है, कोई गीत सुनवा दीजिए। और मुजफ्फरगढ़ से डॉक्टर अहमद नदीम भुट्टा साहब ने गुज़श्ता जुमे को फरमाइश की थी और आपके लिए खुशखबरी यह है कि ये गीत सुनिए और इसके बाद हमारे गेस्ट अरीब अजहर साहब ने ज्वाइन कर लिया, उनसे बातचीत करेंगे।
लगी आज सावन की खुशबू झड़ी है।
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स और जिन मेहमान का हमने जिक्र किया प्रोग्राम के आगाज से लेकर अब तक आखिर उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम अरीब।
वालेकुम अस्सलाम और सबसे पहले तो माजरत देर होने की।
कोई बात नहीं, अभी भी भागते चोर की लंगोटी के मसदाक ही सही, लेकिन थोड़ा सा शो आपने पकड़ दिया। अच्छा अरीब, मैं देख रही थी कि आपका बैकग्राउंड खास तौर पर बहुत रिच है। जैसे आपके वालिद जो हैं वो पायनियर हैं पीटीवी के, आपकी वालिदा जो हैं वो बच्चों के प्रोग्राम प्रोड्यूस भी करती थी, एक्ट्रेस भी थी, और आपके घर में बहुत ज्यादा जो है वो इस आप कह लें कि आर्ट से रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज हैं उनका आना जाना था। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि कितना असर होता है किसी बच्चे पर जब वो ग्रो कर रहा हो माहौल का, और क्या सीखा आपने?
देखिए जी, ये कि बहुत ज्यादा असर करता है और समझ लें कि मूसीकी से मेरा एक्सपोजर तो मेरे अपने माँ के पेट से ही शुरू हो गया था।
सही।
क्योंकि मेरे उसी वक्त जो है वो बहुत अच्छी मूसीकी सुना करते थे जब मैं पेट में था। और मैं तो यकीन करता हूँ इस बात को कि
बिल्कुल
माँ की पेट
साइंस भी साबित करती है, बिल्कुल
वो असर हो रहा होता है उसको अपने अपने एनवायरमेंट।
एग्जैक्टली।
और हमारे पास एक पुराना एक रिकॉर्ड प्लेयर होता था और बहुत जबरदस्त कलेक्शन थी मेरे वालदैन के पास मूसीकी की, जिसमें ईस्टर्न क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल, जैज म्यूजिक, फोक म्यूजिक हमारा सब मौजूद था। तो वो बचपन मैंने वो भी सुनता था। और फिर क्योंकि घर पे हमारे जो बड़े फोक आर्टिस्ट थे उस दौर के, वो बड़े गहरे दोस्त होते थे अब्बा के, तुफैल नियाजी थे, शौकत अली थे, गुरेश खाजी हो गई, आलम लोहार, तो इन लोगों को मैंने बचपन में जो है लाइव सुना हुआ है। और जाहिर है कि वो बचपन में वो एक दफा वो दिल को वो तारें छिड़ गई, तो इसलिए वो सारी उम्र मुझे उस म्यूजिक से जो है ना वो बस मोहब्बत हो गई। उसके बाद फिर जब हम कराची शिफ्ट हुए, जब 80s में अब्बा को टीवी से निकाल दिया था ब्याह के एरा में, फिर हम कराची आ गए थे। और फिर जो है वो फैज साहब से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी अब्बा की, फैज अहमद फैज से। फैज साहब आया करते थे घर पे, बैठा करते थे, और बड़े अदीब और फराज साहब और डॉक्टर सिप्ते हसन और इस तरह की जो पर्सनैलिटी थी, तो जाहिर है कि वो असर तो होता ही है। वो मुझे, मैं तो खैर वो तो जनरेशन और थी, मैं समझता हूँ कि वो जनरेशन पढ़ी लिखी जनरेशन थी, मैं उस जनरेशन से ताल्लुक रखता हूँ जिन्होंने बचपना या लड़कपना पढ़े लिखे माहौल में गुजार दिया इससे पहले कि इंटरनेट ने आके सारी किताबों को खत्म कर दिया।
एग्जैक्टली। अच्छा, तो आपने 80s का जिक्र किया, तो आपका जो 80s का म्यूजिक है वो एक बिल्कुल डिफरेंट है, वो रेवोल्यूशनरी टाइप का म्यूजिक आपने बनाया 80s के बाद, तो वो क्या उसी दौर का असर था?
बिल्कुल, वो उसी दौर का असर था। वो मैं उस जमाने में बड़ा एक इंकलाबी शख्स अपने आप को मानता था, और ये कि मैं समझता हूँ कि वो फिर मैं जरा थोड़ा मैच्योर हुआ तो मेरी थोड़ी ख्यालात में भी थोड़ी सी मैच्योरिटी आई। मैं पहले दुनिया को बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट देखता था, और मैं फिर मैंने देखा कि भाई इतना नहीं है ये कि किसी शख्स को, अब मैं कोशिश करता हूँ कि किसी एक लेंस से सिर्फ ना देखूं, सिर्फ एक जाविये से ना देखूं। उस वक्त मैं सारी चीजों को एक तबकाती निजाम के जाविये से देखा करता था कि ये है इसका क्लास बैकग्राउंड क्या है, ये क्या इस्तेसाल करने वालों में से है या इस्तेसाल इसके साथ होता है।
अब ब्रॉड में देखते हैं।
अब तो मैं हर इंसान को अलग बदल से देखता हूँ।
अरीब, आपके गीत, आपके बहुत अच्छे अच्छे गीत हमने सुनवाए, और हमारे बहुत से जो कॉलर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, उनके फेसबुक पर मैसेजेस भी आए। कुछ ने कहा कि अरीब अजहर के गीत पहली दफा मैंने सुने और इतने खूबसूरत हैं और इतने अच्छे हैं, बहुत शौक हो रहा है वो हमें ज्वाइन करें। महमल इमार ने लिखा डीजी खान से। तो आपने अपने गीतों की बात की, उसके बाद मैं देख रही थी आप बहुत मुल्कों में भी गए, बहुत और तरह की सोसाइटीज में रहने का इत्तेफाक भी हुआ, आपने तालीम हासिल की मुख्तलिफ जगहों से, तो उसने कितना इफेक्ट किया, आपने वहां से क्या सीखा जब आप मुख्तलिफ सोसाइटीज में रहते हैं?
उसका भी हाँ बहुत कुछ। देखें, एक तो ये कि मैं 19 साल का था जब मैं चला गया पढ़ाई करने, उस जमाने में यूगोस्लाविया होता था।
सही।
पहले सबसे पहले तो मैं रूस चला गया था पढ़ाई करने, क्योंकि मैं जो एक इंकलाबी फुरखा हुआ करता था,
तो वहां चले गए।
लेकिन रूस से मैं थोड़ा मायूस हो गया। मैंने देखा कि वो इस तरह निजाम नहीं है जिस तरह मैं सोच रहा था कि हर एक को अपना हाथ चलता है और किसी के साथ ज्यादती नहीं होती। नहीं, उधर भी जो है ज्यादतियां होती है लोगों के साथ। तो मैं थोड़ा मायूस होकर वापस आ गया। फिर मैं चला गया यूगोस्लाविया, और मेरे जाने के वहां पे कोई 6-8 महीने बाद जंग शुरू हो गई, और वो यूगोस्लाविया का वो सारा टूट फूट हो गया। वहां 6 मुल्क वहां से अलग अलग बने। तो जहाँ पे मैं था वो क्रोएशिया का जो है वो खुद मुख्तार मुल्क बन गया। और फिर क्रोएशिया में मैंने 13 साल गुजारे, तो वहां की जबान सीखी, क्रोएशियन जबान से मैंने फलसफा पढ़ा, और वहाँ का म्यूजिक मैंने सीखा, तो आप क्रोएशियन, बॉस्नियन, सर्बियन और जिप्सी म्यूजिक,
जिप्सी और बाल्कान, और बिल्कुल
हाँ। और
आपने ग्रुप भी तश्कील दिया था एक वहाँ पर,
मेरी दोस्ती हो गई, तो आयरिश म्यूजिक भी सीखा है जी।
आपने एक ग्रुप भी वहाँ पर बनाया था ना क्रोएशिया में?
एक क्या बनाया था?
ग्रुप, एक म्यूजिक ग्रुप।
हाँ बिल्कुल, एक म्यूजिक ग्रुप हमारा था। हम आयरिश म्यूजिक को जमाने की दुनिया भर के फोक म्यूजिक से दिलचस्पी थी, तो हमने आयरिश फोक म्यूजिक बजाना शुरू किया आयरलैंड का, जो की बड़ी अजीब सी बात है कि क्रोएशियन एक बैंड हो जो कि आयरिश म्यूजिक बजा रहा हो और जिसका लीड सिंगर पाकिस्तानी हो। तो हम इस बात से ही हम इतने मशहूर हो गए थे एकदम से कि ये तो कोई बड़ा नायाब सा ग्रुप है। तो हमारी अच्छी खासी वहां से फैन फॉलोइंग बन गई थी।
अच्छा।
और मैंने बार्स, कैफे बार्स में, पहले कैफे बार्स में बजाना शुरू किया, सड़कों पे भी मैंने बजाया। उसके बाद फिर हम जरा ज्यादा पॉपुलर हो गए तो कॉन्सर्ट हॉल भरने शुरू किए। लेकिन उस तमाम सफर में ना मुझे वो थोड़ा सा एहसास होता था कि यार मेरी खुद एज एन आर्टिस्ट तरक्की तो हो रही है, मैं दुनिया भर की म्यूजिक सीख रहा हूँ और उसका असर भी हो रहा है, लेकिन वो कोई खाली पना मुझे लगता था कि मैं अपनी आवाज किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं गा क्या रहा हूँ, मेरा पैगाम क्या है। तो शायद बचपन में से वो जो एक इंकलाबी था ना, वो अपने आप कोई नई नजरियात, नए नजरिए की तलाश में था। तो फिर मुझे जो है मुझे फिर दिलचस्पी हुई रूहानियत में, और दुनिया भर के मुख्तलिफ खितों से जो भी इस तरह के कोई लोग मुझे मिलते थे जो कि कहते थे कि हम कोई, हमारे पास कोई तरीका है रूहानियत का, चाहे वो योगा हो या चाहे वो बुद्धिज्म हो या चाहे वो कुछ और हो, उनके साथ मैंने उतना बैठना शुरू किया। और फिर मैंने तसव्वुफ के बारे में पढ़ना शुरू किया, सूफीज्म के बारे में। और पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हुआ कि जो बचपन में मैं जिन म्यूजिशियंस को इतने शौक से सुना करता था, वो जो गा रहे होते थे वो तो एक ऐसी कमाल का कलाम है, ऐसी कमाल की शायरी है कि उसका तो एक आलमी पैगाम है, तमाम इंसानों के लिए पैगाम है, किसी एक मजहब के लिए नहीं है, किसी एक खित्ते के लिए नहीं है, बल्कि तमाम इंसानियत के लिए। तो वो भी दूसरी चीज की मैं तलाश में था। तो फिर मैं वापस पाकिस्तान आया और यहाँ पे फिर मैं खुद किया उसमें, और मेरा शौक था तो फिर ऐसे लोगों के साथ खुद ब खुद मेरा उतना बैठना हो गया। और फिर मैंने पढ़ना खुद सूफियों के बारे में नहीं बल्कि खुद सूफियों को पढ़ना शुरू किया, बुल्ले शाह, शाह हुसैन, ख्वाजा गुलाम फरीद, मियां मोहम्मद बख्श, सचल सरमद, और बस अभी तक मैं वो पढ़े जा रहा हूँ।
तो इसको हम आपकी स्ट्रेंथ कह सकते हैं, आपका जो सूफीज्म है और ये जो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम कह सकते हैं आपकी फोक।
हाँ, मतलब जी मैं भी इसको मैं समझता हूँ कि इसमें भी किसी चीज में मेरा मतलब हर इंसान का एक अपना नुक्ता नजर है, और सूफीज्म भी एक ऐसी चीज है कि हर इंसान उसको एक अपने तरीके से देखता है। तो मेरा जाहिर है एक अपना उसका एक समझ बूझ है जो मैं समझता हूँ कि सही है। मैं समझता हूँ कि नामों में कुछ नहीं पता, बल्कि आप उस नाम के पीछे जो आइडिया है उसकी उसके पीछे हमें जाना चाहिए। तो मतलब दो लोग जो है वो एक ही खुदा का नाम ले सकते हैं लेकिन उनके दिल में बड़ी मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं।
तो अरीब आपका भी एक गीत, जी जी, अभी आपका एक गीत हमने सुनवाया देश पर देश जो है, उसमें मेरे देश, तो उसमें आपके अंदर एक बड़ी मेरे देश,
मेरे देश
जी, तो एक बड़ी आस और उम्मीद है आप के उस गीत में, एक बड़ा अच्छा पैगाम है। तो क्या वाकई ही आप पाकिस्तानी सोसाइटी या फिर पाकिस्तान का जो आम आदमी है उससे इतनी उम्मीदें हैं आपको?
देखिए कि सबसे पहले तो ये गीत जो है ये लिखा मेरे बहुत करीबी दोस्त अरशद तकी ने।
अच्छा।
और उसको कंपोज मैंने किया और उसकी कुछ लाइनें आगे पीछे की, कॉम्पोजिशन मेरी है। लेकिन मैंने इसलिए उसको इस तरह अपना के और उसको कंपोज करके और गाया क्योंकि वो बिल्कुल मेरे एक दिल की आवाज थी और मैं बिल्कुल मुझे पाकिस्तान में ये लगता है रहते हुए अब तो मुझे वापस क्रोएशिया से आए हुए कोई 16 साल हो गए मुझे ऐसा लगता है कि कई दफा मायूसियां होती है यहाँ पे जाहिर है मुश्किल से गुजरते हैं हम बहुत सारी चीजें जो कि इस मगरबी माशरे में रह के इंसान जो है वो फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि भाई बिजली पानी मसलन सिक्योरिटी मसलन तो वो यहाँ के मसाइल रहते हैं लेकिन जो एक चीज मुझे हमेशा पाकिस्तान में इंस्पायर करती है और हमेशा से किया है वो जो हमारे हमारी जो आम आवाम है हमारी जो हमारा हमारी जो गरीब आवाम है हमारे जो मेहनत करने वाले मर्द और ख्वातीन हैं वो किस मुसीबतों से जिंदगी गुजारते हैं लेकिन किस एक ग्रेस के साथ इतने एक मुस्कुराहट के साथ वो पता नहीं क्या क्या कह लेते हैं मुझसे तो सोचा भी नहीं जाता तो इस चीज से मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ इसका मतलब कि उनके दिल में कोई बहुत गहरा ईमान तो है ना जो कि उनको इन सारी चीजों से गुजारता है और वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है।
आप अरीब आप लिखते भी हैं सोसाइटीज़ के बारे में आपने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें और काफ़ी गहराई से आपने लिखा है आपके कई आर्टिकल्स मेरी नज़र से गुजरे हैं उसमें आपने पाकिस्तान और अमेरिका की सोसाइटीज़ जी जी उनका आपने किया बिल्कुल वही मैं पढ़ रही थी वो मुझे अच्छा लगा तो आपने अपने आर्टिकल्स में और भी काफ़ी कुछ लिखा लेकिन एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल हर कोई जो है वो लाहौर बल्कि लाहौर से नहीं कराची जा रहा है हर कोई वहाँ शिफ्ट हो गया है एक बड़ी वहां पर आप कह लें कि इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो आप इस्लामाबाद में क्यों हैं आपने अगरचे अपने आर्टिकल में इस तरफ इशारा तो किया है लेकिन आप बताइए कि आप अभी तक इस्लामाबाद जिसको सबसे आप कह लें कि ठंडा शहर आर्ट के हवाले से कहा जाता है
तो लिटिल गाउन आपको एक खबर पहुंचानी पड़ेगी जो आप तक लगता है अभी तक नहीं
पहुंचाइए कराची में है ना
पिछले साल मई से मैं कराची शिफ्ट हो गया
वो तो मुझे कल नुखबत ने बताया था ये खबर है मेरे पास
तो मैं भी अभी कराची में ही हूँ अभी तक हालांकि घर मेरा इस्लामाबाद में ही है
सही।
और इस्लामाबाद मुझे याद भी बड़ा आता है कराची के जाहिर है इस्लामाबाद का मौसम और ठंडा और पहाड़ और
वो बिल्कुल डिफरेंट है बिल्कुल
और लेकिन ये कि जाहिर है कि कराची एक ऐसा एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है जहाँ पे समझ रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है ना वो फोकस एक नुकते में कराची में आपको नजर आता है आप एक महफिल में बैठे हो तो आपको मुल्क भर से आपको लोग वहाँ मिलते हैं तमाम बोलने वाले मिलते हैं
अरेब तिश्नगी तो रह गई
की बात है
बहुत तिश्नगी रह गई और आप इस वादे के साथ इजाजत हम आपको देंगे कि आप हमारे आइंदा किसी प्रोग्राम में जरूर एक घंटे के लिए आएंगे
मैं जरूर बिल्कुल आऊंगा इस वादे के साथ और बहुत बहुत आदर था हूँ हमें
कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम
कराची फेस्टिवल 30 और 31 तारीख को कराची में उसमें मैं इतना मसरूफ हो गया था कि मैं आज
कोई बात नहीं है आप वादा कर रहे हैं तो जी जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और इसके साथ ही सादिया ज़िब्रानजा और फायजा और फवाद इलियास को इजाजत दीजिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह ने के बाद
जिस पाया भेद कलंदर दा राख हो जिया अपने अंदर दा ओ वासी है सुख मंदर दा जिथे चढ़दी है ना लेंदी है मुंह आई बात ना रहंदी है मुंह आई बात ना रहंदी है।
प्रोग्राम है आपकी सेहत बेहद खास खिदमत है। कंप्यूटर जिन कवायद जवाबित के तहत काम करता है उनमें एक सलाहियत ये भी है कि यह पुरानी टेक्नोलॉजी से नया डाटा और मालूमात अक्स कर सकता है। मिसाल के तौर पर आप इस तरह से समझिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में डॉक्टरों ने एक ऐसे तरीके कार का पता चला लिया है कि वो दिल के मामूल के स्कैन को देखते हुए बरसों पहले उन मसाइल की पेशगोई कर सकते हैं जो आपको बाद में कभी दरपेश हो सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के केविन नॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस नई टेक्नोलॉजी से ये उम्मीद की जा रही है कि इससे मरीजों के पास ये इख्तियार होगा कि वो आने वाले दिनों में दिल के किसी भी नौयत के आर्जे की रोकथाम के लिए मुमकिन इकदाम उठा सकें। आइए इस तरीकेकार का एक जायजा लेते हैं। इस वक्त दिल को स्कैन करने से मरीजों को बआसानी मालूम हो जाता है कि आया शरियानों के सुकड़ने का अमल शुरू हो चुका है لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں.
Now with a new technology we can take it beyond that. You can say you do not have a significant narrowing.
University of Oxford کے چارلس لیمبرس اینٹونی آئرز کا کہنا ہے کہ اب نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم اس سے کہیں زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی شریانیں سکڑ نہیں رہیں, لیکن ان پر سوجن ہے اور اس لیے 5 برس میں یہ تنگ ہونا اور سکڑنا شروع کر دیں گی. ہو سکتا ہے کہ یہ جاننے کے بعد آپ ابھی سے حفاظتی اقدام اٹھانا شروع کر دیں, دوا کا استعمال کرنے لگیں تاکہ شریانوں کے اندر پلیک پیدا نہ ہو اور آپ بیماری سے محفوظ رہیں. تحقیقار کہتے ہیں کہ شریانوں کے ارد گرد سوجن کا علم پہلے سے ہو جانا ایک بڑی کامیابی ہے جس سے دل کے عارضے کی روک تھام ممکن ہو سکتی ہے.
The holy grail in cardiovascular diagnostics was to find a way to identify inflammation in the heart arteries.
University of Oxford کے چارلس لیمبرس اینٹونی آئرز کا کہنا ہے کہ دل کے عارضوں کی تشخیص کے لیے اہم ترین بات یہی تھی کہ دل کی شریانوں کے ارد گرد سوجن کا پتہ لگایا جا سکے, اور گزشتہ 50 سالوں سے ہم اسی بات کا پتہ لگانے کی کوشش بھی کر رہے تھے, کیونکہ اگر آپ کو شریانوں کی سوجن کے بارے میں پتہ چل جائے تو یہ بات وسوخ سے کہی جا سکتی ہے کہ بالآخر شریانوں میں پلیک پیدا ہو جائے گا اور اس طرح مخصوص شریانیں دل کے عارضے کا باعث بن سکیں گی. آکسفورڈ کے تحقیقاروں کو یقین ہے کہ ان کے اس کام کی وجہ سے سالانہ 30,000 افراد میں یہ پتہ چلایا جا سکے گا کہ انہیں مستقبل میں دل کے دورے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے.
UK, we have 100,000 heart attacks every year. With this new technology, although we have not estimated the exact
University of Oxford کے چارلس لیمبرس اینٹونی آئرز کہتے ہیں کہ برطانیہ میں ہر سال 1,00,000 افراد کو دل کا عارضہ لاحق ہوتا ہے, اور اس نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اگرچہ ہم دل کے دوروں کی اصل تعداد کا علم تو حاصل نہیں کر سکتے, لیکن 20-30% افراد کے بارے میں جان جاتے ہیں کہ انہیں دل کا دورہ پڑ سکتا ہے, کیونکہ ان افراد کے اسکین سے ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے, اور جو اسی مقصد کے لیے ہمارے پاس آتے بھی ہیں. دنیا میں دل کی بیماری اور سٹروک موت کی کلیدی وجوہات میں شمار ہوتے ہیں. دل کے امراض کے بارے میں بات ہوئی تو کیوں نہ آپ کو تھوڑی سی معلومات اور دیں. وائس آف امریکہ کی میڈیکل شعبے کے لیے نمائندہ کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی ریاست اوہائیو کے شہر کولمبس میں اب دل کے مختلف عارضوں کا سامنا کرنے والے بیشتر افراد کے لیے زندہ رہنے کے مواقع بڑھ گئے ہیں, چاہے یہ عارضہ غیر معمولی دھڑکن کا ہو یا پھر دھڑکن کے رک جانے کا. اور اس کا سہرا بندھتا ہے ان پروسیجرز پر جو ایک مقامی ہسپتال نے ایمرجنسی کے عملے کے ساتھ مل کر بنائے ہیں. کارڈیک اریسٹ یا پھر عام لفظوں میں دل کے دورے کی صورت میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے, اور اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مریض کی بقا کے لیے مدد کتنی تیزی سے پہنچتی ہے. اگر پاس موجود کوئی راہگیر مصنوعی تنفس فراہم کرے, جسے CPR بھی کہتے ہیں, یا پھر کسی کے دل کی دھڑکن رکنے کے لیے 1 یا 2 منٹ کے اندر اندر ڈیفبریلیٹر کا استعمال کر لیا جائے, تو جان بچانے کے امکان 70% تک ہوتا ہے. امریکہ میں آگ بجھانے والا عملہ کسی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے سب سے پہلے پہنچتا ہے. کولمبس اوہائیو میں فائر ڈپارٹمنٹ کو CPR کے لیے ایک نیا آلہ ملا تو پھر عملے کے افراد نے یہ جاننا چاہا کہ وہ مزید جانیں کس طرح سے بچا سکتے ہیں. اوہائیو اسٹیٹ یونیورسٹی کے ویکسنر میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک نیا عملی منصوبہ ترتیب دیا ہے, اور وہ یہ کہ جب کسی مریض کو ایمبولنس میں لایا جاتا ہے تو عملہ ہسپتال کو ٹیلی فون کر دیتا ہے, اور پھر مریض کو ایک میکان کی خودکار CPR مشین کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. پھر اسی دوران ہسپتال میں ایک ٹیم لیب کے اندر مریض کے علاج کی تیاری کر لیتی ہے, اور اس لیب میں دل کا معائنہ کرنے کے لیے جدید ترین آلات نصب ہوتے ہیں. ایمبولنس میں ہسپتال لائے جانے والے زیادہ مریضوں کو ایمرجنسی روم میں لے جایا جاتا ہے. اب اوہائیو ریاست میں دل کے مریضوں کو فوری طور پر اس لیب میں لے جاتے ہیں, اور اس طرح سے ان کی جان بچانا زیادہ آسان ہوتا جاتا ہے. بیجے چلانی, اردو VOA, واشنگٹن.